ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल्आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين। अजीज तलबा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उसूल इल्म के लिए मुंतखब फरमाया, अपनी अपनी जगहों से मुंतखब फरमा करके अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहाँ जामिया तौरा में पहुँचाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है, फजल व करम है, और यहाँ आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल इल्म के लिए मौजूदा ज़माने में जिस नौ के असबाब व वसाइल मतलूब हैं वो सब मुहैया फरमाए। आपके क़याम तमाम और तमाम ज़रूरियात की यहाँ जामिया की तरफ से किफ़ालत की गई है, और साथ ही साथ बड़े जय्यद और इस्तेदाद असातिज़ा बड़ी मेहनत और तवज्जो से आपको दर्स देते हैं। ये अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा करम है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उसूल इल्म के अंदर मशगूल रहें, अपनी सारी तवज्जो इसके अंदर लगाएं, किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उसूल इल्म के लिए यकसुई बहुत मतलूब है, और इसीलिए ये जो वतन छुड़वाया जाता है, वतन में रहते हुए वो यकसुई जो मतलूब है वो हासिल नहीं होती। तो वतन छोड़ करके दूसरी जगह जब आदमी जाएगा तो वहाँ के सारे ताल्लुकात और अलाइक मौजूद नहीं हैं, उन सबको छोड़ करके आया है, तो वह अब सारा ध्यान और तवज्जो वो इल्म को हासिल करने में लगाएगा। हमारे ज़माने में ये मोबाइल या ऐसी चीज़ें ऐसी आम हो गई हैं कि उनकी वजह से तलबा की जो तवज्जो हुसूल इल्म की तरफ होनी चाहिए उसमें बहुत सारी रुकावटें पेश आती हैं। हमने ऐसे ताल्लुकात कायम कर लिए जिसके नतीजे में जो यकसुई चाहिए वो हासिल नहीं होती। ज़रूरत इसकी है कि आदमी सब चीज़ों से कट करके इल्म के हुसूल में मशगूल रहे। आपका 24 घंटा इसी में लगना चाहिए। ये अल्लाह तबारक तआला का फजल व करम है कि उसने सारी चीज़ें आपके लिए मुहैया फरमाई, और वो महज इसी नस्बत पर कि आपने अपने आप को इल्म हासिल करने के लिए फारिग किया, पेश किया। अभी तो खाली इस नस्बत पर अल्लाह की तरफ से आपके साथ ये मामला हुआ कि आपकी तमाम ज़रूरतों की कफालत की गई, सारे असबाब आपके लिए मुहैया किए गए, हर तरह की राहतें आपको दी गई ताकि आप पूरी यकसुई के साथ ये काम कर सकें। जब आप इल्म हासिल कर लेंगे और फिर इसकी तरवीज़ इशात के लिए अपने आप को फारिग करेंगे, उस वक्त अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आपको क्या कुछ नवाजा नहीं जाएगा, इसको आपको सोचना चाहिए। और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए जो चीज़ें अता की गई हैं उनका हक यही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मकोला है, तदफीफ़ फ़ी कुल शै, ये जो वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन आई है सूरत, जिसमें है जब तालुलन अलन्नास यस्तग़फ़िरून, जब अपना हक वसूल करते हैं तो पूरे पूरा वसूल करते हैं, वैदा कालू हूँ वजन हूँ युक्सरूँ, अगर दूसरों को नाप या तोल कर देने का वक्त आता है तो कम देते हैं। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर जगह ये उसूल चलता है कि जो आदमी अपने हकूक़ को पूरे वसूल करता है और उसके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ आती हैं उनको अदा करने में कमी करता है, कोताही से काम लेता है, ये भी तदफीक है। बहसे तालीम इल्म के हम अपनी सारी चीज़ें वसूल कर रहे हैं मदरसे से, और हमें जो मेहनत करनी चाहिए, जो पाबंदी करनी चाहिए, जिस तरह तवज्जो से काम लेना चाहिए, जिस तरह अपनी सलाहियतों को उसूल इल्म के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें हम कमज़ोरी से, गफलत से और सुस्ती से काम लेते हैं, ये भी इसी तदफीक के अंदर दाखिल है। और ये जो वही सुनाई गई है वहीफीन वह हम भी उसका मिस्ताक बन सकते हैं, इसलिए हमें इस हैसियत से हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों को अदा करने का अहतमाम करना चाहिए। यहाँ जो आपकी आमद हुई है उसमें आपको दो काम करने हैं, एक तो अपनी इल्मी सलाहियतों को उजागर करना है, उसको बनाना है, इल्मी इस्तेदाद को, और अपनी अमली सलाहियत को भी दुरुस्त करना है। इल्मी सलाहियत को दुरुस्त करने के लिए आपको असबाब की पाबंदी और सबक से पहले मुताले का अहतमाम, इसलिए कि जब तक कि आप जैसा कि उसका हक है उसके मुताबिक मुताला नहीं करेंगे तो उस्ताद जो तकरीर फरमा रहे हैं सबक के अंदर वो आप कमा हक़ नहीं समझ पाएंगे। बहुत सी मरतबा तलबा अपने मुताला न करने की वजह से जो कमी रह जाती है और सबक समझ में नहीं आता, उसका इल्ज़ाम उस्ताद के ऊपर लगाते हैं कि उस्ताद हमें बराबर पढ़ाते नहीं, हमारी समझ में नहीं आता। हालांकि सबक के लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी और शक्ल मुताला उसको किया नहीं, जिसकी वजह से सबक जैसा कि समझ में आना चाहिए नहीं आया, इसमें गोया कमज़ोरी हमारी है, उस्ताद के किसी इसको दखल नहीं है, लेकिन हम उसका इल्ज़ाम उस्ताद पर देते हैं। कदीम ज़माने में असातिज़ा मुताला न करने की सूरत में पढ़ाते नहीं थे, हमारे बहुत से असलाफ के हालात को जब हम देखते हैं तो उसमें ये चीज़ मिलती है कि किसी रोज़ अगर वो मुताला करके नहीं गए तो उस्ताद ने नहीं पढ़ाया, उनको इतना गम होता था कि खाना तक छूट जाता था। आज अगर उस्ताद मुताला न करने पर सबक न पढ़ाए तो मैं समझता हूँ साल भर कभी सबक पढ़ाने की नौबत ही नहीं आएगी। दोबारा मुताले का अहतमाम बहुत ज़रूरी है और ये सबक को के समझने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। और फिर सबक की हाजिरी और पाबंदी ये भी बहुत ज़रूरी है, उसमें कभी नागा नहीं होना चाहिए। हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि एक दिन के नागे की वजह से 40 दिन की बरकत ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल पाबंदी सबक की हजरत क़ारी साहब नवर अल्लाह वरकदहु ने आदाबुल मुतालिमीन में वाक़या लिखा है हजरत क़ारी अब्दुर्रहमान साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो पढ़ने के लिए हजरत शाह अब्दुलअज़ीज़ साहब दहली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो उनका इंतकाल हो गया और अभी उनकी तकमील नहीं हुई थी, बड़े गमगीन थे। वैसे ख़ानदान के लोगों ने हजरत शाह अब्दुलअज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनकी जगह पर पढ़ाने के लिए हजरत शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर किया, लेकिन चूँकि जो बड़ों को देखे हुए होते हैं उनको बाद के लोग नज़रों में जचते नहीं, उनके दिल में ख्याल आया कि अब कैसे मेरी तकमील होगी। उन्होंने ख्वाब में हजरत शाह अब्दुलअज़ीज़ साहब को देखा, फरमा रहे हैं कि तुम इनके दरसों में शरीक हो जाओ, मुझसे जो फैज़ हासिल होता था वो उनसे हासिल होगा। चुनांचे उनके दरसों में शरीक होने लगे और दूर रहते थे जहाँ सबक होता था जिस मस्जिद में, वहाँ से इनकी क़यामगाह जहाँ थी मस्जिद में वो मस्जिद दूर थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत सख्त तेज़ बारिश हो रही है, सबक का वक्त हो गया, तलबा हजरत शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास सबक के लिए हाजिर हो गए। देखा कि हजरत क़ारी अब्दुर्रहमान साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए, हजरत शाह साहब ने सबक शुरू नहीं किया। तलबा समझ गए इनके ना आने की वजह से इन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। तलबा ने अर्ज़ किया, हजरत बहुत दूर रहते हैं और बारिश इतनी तेज़ है इसलिए उम्मीद नहीं है कि वो आ पाएँ। लेकिन हजरत शाह मौली साहब साहब रहमत राय ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अभी थोड़ी देर गुजरी थी, देखा कि घड़े के अंदर वो किताब रखे हुए, घड़े को उल्टा पकड़े हुए ताकि किताब भीग न जाए, और खुद भीगते हुए आए, कांप रहे थे सर्दी की वजह से, दरसा में शरीक हुए। ये मंजर देख कर शाह मोहम्मद इसाफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुझे यकीन था कि वो कभी नाला नहीं करेंगे। और फिर एक जुमला और फरमाया कि तुम्हें मालूम है हदीस के अल्फाज तो ये मुझसे हासिल करते हैं और मानी मैं इनसे हासिल करता हूँ। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हमारे अकाबिर के यहाँ सबक की पाबंदी बहुत अहमियत रखती थी। खुद इन्हीं हजरत काजी अब्दुलरहमान साहब पानीपत रहमतुल्लाह अलैह मुतालिक हजरत ने लिखा है कि चूँकि पानीपत दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं, इसे पानीपत के लोग अपने कामों के लिए आते जाते रहते थे दिल्ली। किसी की मुलाकात अगर हो गई रास्ते में तो सलाम कह के फौरन ये कह देते थे कि मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ, आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, जब पानीपत आऊँगा तब आपसे मिलूँगा। मतलब ये है कि ये हाजिरी जो है बड़ी अहमियत रखती है। आजकल तो एक मिजाज बन गया, कोई ज़रा सा बहाना मिल जाता है तो हम सबक में गैर हाजिरी कर देते हैं। कोई ऐसा आदमी अपने वतन का आ गया जिससे कुछ ज़्यादा मुनासबत नहीं, वतन में रहते हुए भी कभी उससे कभी कोई ख़ास मुलाकात की नौबत नहीं आती थी, लेकिन अगर यहाँ आ जाएगा तो बस बड़ी आवभगत होगी, उसको लिए लिए फिरेंगे वहाँ, इसलिए ताकि सबक में गैर हाजिरी का बहाना मिल जाए। ये जो हमारा एक मिजाज बना हुआ है किसी भी बहाने से सबक की गैर हाजिरी नागा, ये दरअसल हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए सबक की हाजिरी का भी अहतमाम, और हाजिरी खाली जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जहनी तौर पर, यानी सबक में जब आप रहें तो आपका जहन भी इधर उस्ताद जो फरमा रहे हैं उनकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, एक लम्हे के लिए भी गफलत तारी नहीं होनी चाहिए। वह जिस्मानी जहनी दोनों एतबार से अगर आप सबक में बराबर हाजिरी देंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की का बायस होगी। ये दूसरी चीज़ है, दूसरी शर्त है, और उसमें भी कोशिश यही हो कि सबक समझे बगैर आगे न बढ़ा जाए। खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई बात समझ में नहीं आई तो उस्ताद से दोबारा पूछ करके समझ लें, समझे बगैर आगे न बढ़ें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुल मुनवा में मुस्तकिल इस पर बाब कायम किया है कि न समझने की सूरत में उस्ताद से पूछना। वह इस बाब को कायम करके ये बतलाना चाहते हैं कि इसमें कोई उस्ताद की गुस्ताखी और बेअदबी नहीं है, बल्कि ये पसंदीदा और मुस्तहसन चीज़ है कि समझ में न आने की सूरत में उस्ताद से पूछा जाए, समझा जाए, और समझे बगैर आगे न बढ़ा जाए। ये दूसरी चीज़ है सबक इल्म के हुसूल के लिए। और तीसरी चीज़ इसके बाद तकरार का है, तमाम तमाम दो दो साथी जो हैं बन जाएं, और हर एक उस्ताद की वो तकरीर जो उसने दर्श के वक्त की है वो करे, दूसरा उसके सामने फिर ये करे और दूसरा सुने, दूसरा करे ये सुने, इस तरह रोज़ाना इसका अगर अहतमाम होगा। अगरचे सबक सुना है, समझ में आया है, लेकिन जब तक कि आप उसका तकरार नहीं करेंगे वहाँ तक वो जहन नशीन नहीं होगा। जहन में बिठाने के लिए और याद रखने के लिए उसको ज़बान से एक आध मरतबा अदा कर देना बहुत ज़्यादा वह मौसर और मुफीद है। इसलिए तकरार, और तकरार की वजह से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी इफ़हाम और तफहीम की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। जो तलबा तलब इल्मी के ज़माने में तकरार कराने का अहतमाम करते हैं वो उनके अंदर तदरीसी सलाहियत पैदा होती है। आजकल मदारिस को अच्छे पढ़ाने वाले, अच्छे समझा करके दर्स देने वाले असातिज़ा नहीं मिलते। वजह क्या है कि तलबा में तकरार का जो माहौल था, अहतमाम था, वो बाकी नहीं रहा। बहुत से ज़हीन तलबा होते हैं, वो ज़हीन होते हैं, समझते हैं, लेकिन वो तकरार का अहतमाम नहीं करते, खुद मेहनत कर लेते हैं, इम्तिहान के लिए भी भरपूर तैयारी करते हैं, और इम्तिहान में आला नंबरात से पास भी होते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन तकरार की आदत न होने की वजह से उनमें افہام اور تفہیم کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ اچھے مدرس نہیں بن پاتے. آج کل مدارس کو اچھے مدرس کی بھی ضرورت ہے, اس لیے تکرار کی بھی عادت ڈالی. یہ تین چیزیں گویا طلب علم کے لیے ایک شرط اور رکن کی حیثیت رکھتی ہیں. حضرت حکیم الامت نور اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ان تین باتوں کا اہتمام کرے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو علم ضرور آئے گا. اس کے علاوہ باقی جو ہے جو آداب ہیں سلسلے میں, اساتذہ کا ادب و احترام وہ بھی دل سے ہونا چاہیے. ان کی غیبوبت میں بھی, ان کی غیر حاضری میں بھی کبھی ان کے متعلق کوئی لفظ گستاخی کا, بے ادبی کا یا غیبت وغیرہ کا ہماری زبان سے نکلنا نہیں چاہیے. آج کل تو عام طور پر طلبہ کی غیبت کا موضوع جو ہے اساتذہ عموماً ہوا کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے وہ علم سے محروم رہتے ہیں. ہمارے استاد کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت اور ان کا احترام ہمارے دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ کا تصور نہ کیا جا سکتا. ہمارے اسلاف کے یہاں اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے اساتذہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسے جو ہے وہ کسی حاکم سے ڈرا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کتاب کا ورق بھی بہت آہستہ سے الٹتا تھا تاکہ اس کی کوئی آواز ہو کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچے. اتنا زیادہ اساتذہ کا ادب و احترام اور ان کی راحت رسانی کا ہمارے اسلاف کے یہاں اہتمام ہوتا تھا, کیونکہ استاد ہمارے لیے سبب ہے حصول علم کا. آج کل طلبہ میں ایک ذہنیت یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور اتنی شروحات, ہمارے پاس سی ڈی ہے, یہ ہے, اور ہم دیکھ لیں گے کتاب کا, اس کتاب کی شرح دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, کتنا ہی دیکھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہے کہ علم آتا ہے استاد کے واسطے سے. اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے استاد کو سبب قرار دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا فیضان استاد کے قلب کے ذریعے سے آپ کے قلب پر ہوا کرتا ہے. تو جب تک کہ آپ استاد کا ادب و احترام نہیں کریں گے, وہاں تک یہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی. ہر چیز میں اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے. جب تک کہ اس سبب کو آپ اختیار نہیں کرو گے اور اس سبب کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو آپ تک پورا نہیں کریں گے, وہاں تک کما حق ہو آپ کو علم نہیں آ سکتا. جیسے دنیا کسی کو اگر دودھ کی ضرورت ہے, میں مثال دیا کرتا ہوں, دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ کہاں سے حاصل ہوگا؟ گائے سے, بھینس سے, بکری سے. یہ تین جانور اس وقت ایسے ہیں جن سے آدمی دودھ حاصل کر سکتا ہے. کوئی آدمی کہے کالی کالی بھینس, میں تو اس سے دودھ نہیں لیتا, میں تو شیرنی سے حاصل کروں گا. تو وہ لوگ کہیں گے کر لے, ملتا ہو تو ہاں شیرنی سے دودھ. کہیں اللہ تعالیٰ نے انہی کو سبب بنایا ہے, تو ان سے ہی آپ کو دودھ ملے گا, اس اور چیز سے نہیں ملے گا. آپ آم کا پھل لینا چاہتے ہیں تو آم کے درخت سے ملے گا. آپ کوئی اور پھل تو وہ اس درخت کا, اس پھل کا جو درخت ہے اس سے ملے گا. اسی طرح علم جو ہے وہ آپ کو استاد کے واسطے سے ملے گا. علم کا فیضان اللہ تعالیٰ استاد کے قلب کے ذریعے سے آپ کے قلب پر کرتے ہیں. اس لیے استاد کی ذرہ برابر دل میں اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے, چاہے اس وقت بہت سارے اسباب بہت سے پیدا ہو چکے ہیں, بہت ساری چیزیں پیدا ہو چکی ہیں, لیکن علم دین کے واسطے اصل یہی بنیاد ہے. اسلام میں علم دین کے لیے سند کو بہت اہمیت دی گئی ہے. تو بہرحال آپ اپنا اساتذہ کا ادب و احترام اور ان کی خدمت جو ہے اس کو لازم پکڑیں. جتنا زیادہ ادب کرو گے, جتنا زیادہ خدمت کا اہتمام کرو گے, اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب العلم میں ایک موقع پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کتاب العلم میں, وہاں اس کے ذریعے سے اسی کی طرف وہ توجہ دلانا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی دو واقعے ہیں اور دو دعائیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, ایک دعا تو دی تھی اللہم علمہ الکتاب, اور دوسری دعا دی تھی اللہم فقہ فی الدین. اور واقعی بھی ان کے دو ہیں. ایک موقع پر جب وہ اپنی خانہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رات گزارے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے, یہ بھی پھر اٹھ کر کے اسی طرح وضو وغیرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں طرف کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائیں طرف سے ہٹا کر دائیں طرف اپنے بالکل برابر کھڑا کیا, تو ذرا پیچھے ہٹ گئے, پھر کیا پھر پیچھے ہٹ گئے. بعد میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس موقع پر مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعد میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیوں کیا جب میں نے آپ کو اپنے برابر کھڑا کیا تھا, تو کہا کہ امتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ نبی کے بالکل برابر کھڑا رہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے آپ کو دعا دی تھی اللہم فقہ فی الدین. اور دوسرا موقع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے باہر پانی لا کر کے رکھ دیا تھا, آپ فارغ ہو کر کے جب آئے دیکھا پانی رکھا ہوا ہے طہارت کا, پوچھا یہ کس نے رکھا, کہا ابن عباس نے رکھا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہم علم الکتاب. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں واقعات کے مناسبت سے یہ دو باتیں فرمائیں, ادب بھی ہونا چاہیے استاد کا اور خدمت بھی ہونی چاہیے. جتنا زیادہ ادب کرو گے, جتنی زیادہ خدمت کرو گے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. اور جس طرح استاد کا ادب ضروری ہے, اس طرح کتابوں کا, آلات علم جو ہیں کاغذ قلم وغیرہ, اس کا بھی ادب ہونا چاہیے, کتاب کا بھی ادب ہونا ضروری ہے. حضرت مجدی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, ایک مرتبہ وہ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے داخل ہوئے. ابھی تو قضاء حاجت کے لیے جو ہے سطر کھولا نہیں تھا, اچانک انگوٹھے کے اوپر نظر پڑی ایک کالا نقطہ. اس زمانے میں وہ لکھنے کے دوران قلم کبھی رک جاتا تھا, تو قلم کو کے اوپر روشنائی کو جاری کرنے کے لیے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قلم کی نوک کو انگوٹھے کے اوپر رکھ کر کے اس کو زور دیا کرتے تھے. حضرت نے لکھنے کے دوران اسی طرح کیا تھا, وہ نقطہ رہ گیا تھا. بیت الخلاء میں داخل ہوئے, اس نقطے کو مٹانے کی نوبت نہیں آئی, کہ نظر پڑتے ہی فوراً واپس آ گئے اور اس کو پہلے دھویا اور اس کے بعد بیت الخلاء میں تشریف لے گئے. یعنی اتنا زیادہ ادب, یہ علم کا ایک ذریعہ تھا اس کا, حالات علم کا ادب جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ادب جتنا بھی زیادہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ادب کی بنیاد پر بہت زیادہ نوازتے ہیں. بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, ادب تاجیش فضل الہی بے نہ برسر بے رو ہر جا کے خواہی, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک بڑا تاج ہے. ادب سر پر رکھو, جہاں چاہو چلے جاؤ. دوبارہ ادب کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ادب میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اپنے جتنے جو ہے محسنین ہیں علم کی راہ میں, یہاں مدرسے میں رہتے ہوئے آپ کے تمام اساتذہ اور آپ کی لیے جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, تمام ناظمین نظماء اور یہ سب, یہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ خاص طور پر اپنے جس استاد سے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اسی کے ادب کا اہتمام کرتے ہیں, اور دوسرے اساتذہ کے ادب کا اہتمام نہیں کیا جاتا. حالانکہ جس طرح آپ کے یہ استاد یا اس مدرسے کے اندر علمی خدمات انجام دے رہے ہیں, دیگر اساتذہ بھی علمی خدمات انجام دے رہے ہیں, طبقے اساتذہ سے ان کا بھی تعلق ہے, آپ کے استاد کے طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں. بھلے اس وقت آپ کی کتاب ان کے پاس کوئی نہ ہو, لیکن آپ کو ان کا بھی ادب کرنا چاہیے. اور بہت سے طلبہ تو اتنے زیادہ غافل کہ شروع میں مثلا فارسی عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھی اور اس کے بعد جب اب دورے میں آ گئے تو جن کے پاس ابتدائی کتابیں پڑھی تھی ان کا ادب و احترام وہ جیسا کہ بڑوں کا کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور بہت بڑی غفلت ہے, اس کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المتعلمین میں حضرت قاضی عبدالرحمٰن صاحب نے حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مظاہر کے صدر مدرس تھے, और सुनन तिर्मिजी का दर्श देते थे। हजरत ने लिखा है उनके जमाने में जब तिर्मिजी का दर्श देने वाला उनसे आला और बढ़कर के और कोई नहीं था। कोई मुहद्दिस उनके हालात में लिखा है कि वो जब पढ़ने के लिए अपने यहाँ से यहाँ इधर आए, सहारनपुर आने लगे, तो अपने तमाम असातिज़ा से जिनसे उन्होंने बचपन में तालीम हासिल की थी मिल करके आए। एक उस्ताद जो नहीं थे, किसी वहाँ मौजूद नहीं थे, गए तो थे उनकी मुलाकात के लिए लेकिन वो मौजूद नहीं थे, नहीं मिल पाए। अब वो नई मुलाकात नहीं, यहाँ आ गए। फरमाते यहाँ आने के बाद जब मैं सबक में शुरू हुआ मशगूल हुआ तो सबक ही समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैं अपनी जमात में बड़ा समझदार समझा जाता था, बहुत सोचा, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तो क्या वजह है समझ में आ जाए। तो दिल में ये बात आई कि फलां उस्ताद को मिले बगैर आ गया था। यहाँ से खत लिखा, उनको कार्ड लिखा जवाबी कि हजरत मैं आपकी खिदमत में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था लेकिन आप मौजूद नहीं थे इसलिए मुलाकात नहीं हुई। मैं बहरहाल उसकी मुलाकात किए बगैर यहाँ आ गया, आप माफ़ करें। तो उनका जवाब आया कि जब मुझे पता चला तो मैं यूँ समझा शायद मुझे छोटा समझ करके आप नहीं आए, लेकिन आपके खत से मालूम हुआ कि आप आए थे और वजह न मिलने की ये थी। चुनाचे अपना दिल जो उनका दिल में जो ख्याल पैदा हुआ था वो दूर हुआ। कहते हैं सबक समझ में आना शुरू हो गया। तो हकीकत तो ये है कि ये चीज़ें बज़ाहिर देखने में मामूली होती हैं लेकिन उसके असरात बड़े दूरस होते हैं। इसलिए पढ़ने ही के ज़माने में नहीं, पढ़ने के बाद भी अपने असातिज़ा के साथ जो ताल्लुक़ है वही आपकी इल्मी तरक्की का सबक है, सबक बनेगा। आपकी अल्लाह ताला आपसे इल्मी खिदमात भी उसी सूरत में लेंगे तब आप अपने असातिज़ा के इन हुकूक़ को अदा करेंगे। हाँ, आदा तालिबन में लिखा है कि तालिबन जो है शमशुल अइमा सरकसी या हलवानी रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले गए थे, उनके तमाम शागिर्द उस इलाके के मुलाकात के लिए आए। जैसे आप अपने वतन में रहते हों उस तरफ उस इलाके में आपके कोई उस्ताद आ जाएं तो आपको चाहिए कि ज़रूर उनकी खिदमत में हाजिरी दें। इसलिए कि जब उस्ताद उस इलाके में आएंगे उनके दिल में ख्याल आता है मेरे पास पढ़े हुए फला फला शागिर्द यहाँ इस इलाके में रहते हैं, और उस सूरत में अगर आपने मुलाकात नहीं की तो वो चीज़ आपकी इतनी तरक्की के लिए आगे रुकावट बन सकती है। तो अपना से उनके तमाम शागिर्द मुलाकात के लिए आए। एक शागिर्द जो नहीं आए, पूछा उन्होंने बाद में उनसे भाई क्या हुआ, कहा कि वो अपनी वालिदा की खिदमत में मशगूल थे। उन्होंने जवाब में उन्होंने फरमाया उम्र तो उनको नसीब होगी लेकिन उनकी उनके दर समय बरकत नहीं होगी। तो हकीकत तो ये तो बात की बात है, तलब इल्मी की बात नहीं, बात का किस्सा है। तो कहने का हासिल ये है कि उस्ताद का मामला बड़ा अहमियत रखता है तलब इल्मी के ज़माने में भी और तलब इल्मी के बाद भी। आखिर तक पूरी ज़िंदगी उसका इसी तरह अहतमाम होना चाहिए। अपने आप को उनके सामने बच्चा ही समझो, जैसे बेटा बाप के सामने बेटा ही है, बच्चा ही है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। इसी तरीके से अपने असातिज़ा के अदब व एहतराम में ज़रा बराबर भी कोताही और कमी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने से सुनी हैं या लिखी हुई हैं। और देखो इल्म के हासिल करने के लिए जो तरीक़े जो असबाब वसाइल इख्तियार करने चाहिए ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। एक मुस्तकिल मौजू है इल्म का, तालीमुल मुतालिम। तालीमुल मुतालिम एक किताब का नाम भी है और तालीमुल मुतालिम ये मौजू भी है। इस मौजू पर बेशुमार किताबें लिखी गई, जैसे नहवा जो है एक फन है, इल्म है, उस पर बेशुमार किताबें लिखी गई है। ऐसे इल्म किस तरह हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों का लिहाज करना चाहिए, ये एक ऐसा मुस्तकिल फन है कि उस पर कदीम ज़माने से हजरात अकाबिर ने उलमा ने किताबें लिखी हैं, अरबी में हैं, फारसी में हैं, उर्दू में हैं। तो आपको चाहिए इस मौजू पर जो किताबें हैं उन किताबों को भी हासिल करके उनका मुताला करें और उन किताबों में जो चीज़ें बतलाई गई है कि कोई भी आदमी आज कोई आदमी सफ़र करना चाहता है, ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ नहीं गया है बाकायदा उसकी उसका रहनुमा जो होता है कहीं ना कहीं किसी जो है बुक स्टॉल पर से वो नक्शा खरीदेगा, उसके रहनुमाई के लिए जो किताब होती है वो लेता है, वो सब देखता है, उसके बाद आगे सफ़र करता है। ऐसे ही तलब इल्मी के अंदर हमें किन किन चीज़ों का लिहाज करना चाहिए, कौन से आदाब बरतने चाहिए, किन शुरू का अहतमाम, किन हुकूक की अदायगी का अहतमाम, इस मौजू पर मुस्तकिल किताबें लिखी हुई हैं। खुद हमारे हजरत अली साहब नवरल्ला उमर कदो की किताब जो है आदाबुल मुतालिमीन, जो आपको हफ्ते में एक मरतबा सुनाई भी जाती है, लेकिन उस सुनाने पर रहते आजकल तो सुनाते हैं तो भी उस वक्त तलबा बिल्कुल बेखबर होकर के इधर उधर मशगूल होते हैं, ध्यान से जिस तरफ सुनना चाहिए वो उसका अहतमाम नहीं करती है, नहीं बल्कि वो सुनाए ना सुनाए लेकिन आपको खुद लेकर के उसका मुताला करना चाहिए और उसमें जो जो चीज़ें बतलाई गई हैं, जो मंदरजात हैं उनको जहन नशीन कीजिए, जो हिदायतें उनमें दी गई हैं उन हिदायतों का अहतमाम और उस पर अमल का अहतमाम कीजिए, तो देखो अल्लाह तब तारा आपको कैसे इल्म से नवाजते हैं और फिर आपके उलूम में कैसी बरकत होती है। यही वो तरीका है जो हमारे असलाब ने इख्तियार किया, आजमाया, अमल किया, उससे फ़ायदा उठाया, गोया ये आजमूदा तरीक़ा है, हमें भी बताया, ये कोई हकीम का सदरी नुस्खा नहीं है जिसको अपने सीने में लेकर के दफन हो गए, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने हमको ये सारी बातें बतलाई हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, बरतना चाहिए, उस पर अमल का अहतमाम करना चाहिए, जितना ज़्यादा उसको हम बरतेंगे अमल करेंगे उतना ही अल्लाह तबरक तआला हम सबको इल्म से नवाजेंगे, यही वो तरीक़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, साला साल का सदियों का आजमूदा तरीक़ा है। इसलिए आप हज़रात भी इन किताबों को हासिल करें और हासिल करके उसके मुताबिक जो है अमल का अहतमाम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबरक तआला आपको नवाजेंगे। फिर हर इल्म फ़न को किस तरह पढ़ना चाहिए, इस सिलसिले में भी बाकायदा किताबें हैं, उनका भी मुताला होना चाहिए। हम ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें तो बहुत देखते हैं, अखबार हैं और दूसरी और चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान होता है, लेकिन तलब इल्मी के ज़माने में इन दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों के बजाय हमारा पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो और हमारी पूरी मेहनत जो है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ होनी चाहिए। तो बहरहाल आप हज़रात जितना ज़्यादा इसकी तरफ एहतमाम करेंगे, तवज्जो करेंगे, इतना ही आपका फ़ायदा है। अल्लाह तआला ने आपको ये मौका दिया है, इस मौके से फ़ायदा उठाइए और फिर ये है कि इसके मुताबिक कल को क़यामत में अल्लाह ताला के यहाँ सवाल भी होगा। कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनी नईम, कि क़यामत के रोज तुमको तुमसे अल्लाह की नेमतों के मुताबिक ज़रूर सवाल किया जाएगा। ये हमें इल्म के हुसूल के जो मौके असबाब वसाइल अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसके मुताल्लिक भी सवाल होगा कि आपने इस नेमत का क्या हक अदा किया और इससे कितना फ़ायदा उठाया, कितना इल्म हासिल किया, अगर कमी रह गई है उस पर गिरफ्त होगी। और जैसा कि कुरान में बारी ताला का इरशाद है लई शकर तुम लज़ीनन्नकुम वलई कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया तो मैं इजाफा करूँगा। शुक्र का मतलब क्या है? खाली जबान से अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कह देना नहीं, बल्कि वो नेमत जिस मकसद के लिए अल्लाह की तरफ से दी गई है उस मकसद में उस नेमत को इस्तेमाल करना। किसी को माल दिया है तो खाली मालदार अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कहता रहे और माल को नेकी के रास्तों में खर्चा न करे तो ये हकीकी शुक्र नहीं हुआ। हकीकी शुक्र यह है कि माल को उन जगहों पर खर्च करना चाहिए जहाँ खर्च करने का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है। इसी तरीके से अल्लाह ने आपको ये जो मौके अता फरमाए हैं उनका हकीकी शुक्र यह है कि इन मौके से आप फ़ायदा उठाएं और जितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएंगे उतना अल्लाह तआला आपको तरक्या से नवाजेंगे। और हर मरहले को कीमती समझा, अरबी अव्वल में दाखिल हुई है पहले दर्जे में, तो पहले दर्जे की भी अपनी जगह पर अहमियत है, उस दर्जे में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसकी भी अहमियत है, उनको गौर से तवज्जो से समझिए, सुनिए, याद कीजिए, इसमें जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे यही आगे आपके लिए दूसरे दर्जे के अंदर पहुंचने का और उसमें आगे बढ़ने का जरिया बनेगी। बीच में जरा बराबर भी किसी भी दर्जे में अगर मेहनत में कमी आ जाएगी तो ये कमी आपके लिए एक ऐब और नुक्स का सबब होगी। देखिए, आपने अगर इल्म मेहनत से हासिल किया लेकिन किसी फन के हासिल में कमी रह गई, इल्म नहव में कमी रह गई, अरबी के इब्तदाई दर्जात में जहाँ नहव की किताबें पढ़ाई जाती हैं उनको जिस अंदाज से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपने ध्यान नहीं दिया और कमी रह गई। बाद में आपने दूसरे उलूम की तरफ खूब तवज्जो की, मेहनत भी की, पढ़ाया भी, यहाँ तक कि हदीस में भी माहिर बन गए, हदीस भी पढ़ाने लगे, लेकिन वो जो कमी रह गई है नहव की, वो आपके लिए जो है नुकसान का सबब है। आप हदीस का जब दर्स देंगे तो आपके तलबा महसूस करेंगे कि हमारे उस्ताद जो हैं वो इल्म हदीस में माशाल्लाह माहिर मालूम होते हैं लेकिन नहव में कुछ कमी लगती है। वो कमी छुपती नहीं है, किसी भी फन में जो कमी रह जाएगी वो रहेगी, बाद में उसकी तलाफी करना मुश्किल हो जाता है। ये तो इल्मी एतबार से, अमली एतबार से भी यहाँ रहते हुए आपको अपनी अलमी अमली सलाहियतों को भी उजागर करना है। नमाज बाजमात का अहतमाम करना चाहिए, तिलावत का अहतमाम करना चाहिए, दुआओं का अहतमाम करना चाहिए, और सब उसके अलावा ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो ये कि गुनाहों से बचने का अहतमाम। ये जो मासियत है इल्म के लिए रुकावट है, इल्म के मवाने के अंदर पहला माने वो यही है गुनाह। आजकल मौजूदा दौर में हम लोग तलबा जो हैं गुनाहों से जिस तरह बचने का अहतमाम करना चाहिए करते नहीं हैं, जिसके नतीजे में हमारे इल्म में कमी रह जाती है, ये कमी नहीं। देखो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के वशार आपने सुने होंगे, शकौत इला वकीन सो हिफ्ज़ी फौसानी इला तर्किल मासी फ़ैन्दलिल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लियासी। या तो वो जो दूसरा शहर है उससे ही मैं इस्तेलाह करना चाहता हूँ, खाली कुव्वत हाफ़िज़ा नहीं बल्कि नफ्स इल्म जो है उसका भी आना मौकूफ इस पर कि आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाए। गुनाह के साथ इल्म नहीं आ सकता, इसलिए हर छोटे बड़ी मासियत से, हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को बचाने का अहतमाम करें। हम लोग उसमें बड़ी गफलत बरतते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही चीज़ इल्म से रुकावट बन जाती है। बहरहाल मवाने इल्म में सबसे बड़ा माने जो है वो मासियत है, इससे अपने आप को बचाएं। सुस्ती भी है और जो है लायानी की मशगूली, ये भी, ये दोनों चीज़ें भी माने हैं। आपको खूब मेहनत करनी है, अपने आप को खपा देना है इल्म को हासिल करने के लिए, यानी खूब लगे रहें 24 घंटे हुसूल इल्म के अंदर लगे रहें, ऐसा लगें और ऐसा अपने असातिज़ा से फ़ायदा हासिल करें कि उस्ताद को थका दें, तब कहा जा सकता है कि गोया आप वाकईतन जो है इल्म के शौकीन हैं। वैसे तो मिश्कात में आपने पढ़ा होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मन उमान ला अशबाहान मन हुमुन फी इल्म ला अशबाहु मिन्हु, ये दो भूखे दो हरीस ऐसे हैं जिनका पेट भरता नहीं, उनमें से एक इल्म का हरीस जो इल्म से उसका पेट भरता नहीं। कितना इल्म हासिल कर लो बस कनात नहीं होनी चाहिए, इल्म में कनात मतलूब नहीं है, हिर्स मतलूब है। तो बहरा आप खूब अपने आप को लगाए रखिए और सुस्ती से काम न लें, मेहनत और तवज्जो से काम लें। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तारीख दिमश्क उनकी तारीख कई जिल्दों में 80 जिल्दों या उससे ज़्यादा में अभी तबाहत होकर के आई है। वो इल्म हासिल करने के लिए नेशापुर गए, वहाँ अबू अब्दुल्लाह फरावी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो वो इतना अपने उस्ताद के पीछे लगे कि 3 दिन के अंदर उनके उस्ताद जो है इमाम फरावी रहमतुल्लाह अलैह थक गए, और उन्होंने कसम खाई कि कल ये तालिब इल्म मेरे घर आएगा तो मैं अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। अब दूसरे दिन सुबह में किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया, इन्होंने खोला, एक आदमी कहने लगा अना रसूल व रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی اور قاصد بن کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے خواب میں دیکھا, آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں کہا کہ تم جاؤ فلانی کے پاس اور میری طرف سے یوں کہو, ایک شامی نوجوان جو گندم گو ہے تمہارے علاقے میں میری حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, تم ان سے اکتاؤ من. یہ پیغام حضور کا پہنچایا. چنانچہ اس کے بعد حاضر ابن ساقی جب ان کے پاس جاتے تھے تو جب تک کہ یہ خود نہ اٹھتے تھے وہاں تک امام فراوی مجلس درس سے اٹھتے نہیں تھے. اس سے ایک طالب علم کا مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں کتنا اونچا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال آپ حضرات کو بھی اس میں مشغول ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول, ایسے ایسا اسباب و وسائل, ایسے اساتذہ, ایسے مشفق مربی تم کو عطا کیے ہیں, ان کا احسان مانو. آج کل ناشکری بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم اپنے اساتذہ اپنے مربیوں کا جیسا احسان ماننا چاہیے اس میں بہت کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے. یہ احسان ناشناسی جو ہے وہ بھی آدمی کو نعمتوں سے محروم کرنے کا سبب بنتی ہے. اس لیے بہرحال آپ حضرات ان چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ یہی آپ کی طلب علمی کی محنتیں, توجہات, مشقتیں جو آپ جتنی زیادہ اٹھائیں گے وہی آپ کو آگے جا کر کے جو ہے آگے بڑھائے گی اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے دین کا کام لیں گے. آپ میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ دین اور علم دین کی اشاعت اور خدمت کا کام لے, حفاظت کا کام لے؟ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے, لیکن خالی تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک کہ اس کے لیے اسباب اور محنت اختیار نہ کی جائے تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ان چیزوں کا اہتمام کرو گے تو گناہوں سے بچنا. دیکھو آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ نے پڑھا ہوگا, امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کل کو قیامت میں کسی کی غیبت کے سلسلے میں میری گرفت نہیں ہوگی. غیر دن انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرتے تھے. غیبت ایک ایسی عام چیز ہو گئی ہے کہ ہر کس و ناکس اس کے اندر مبتلا ہے, اس کے لیے بچنا دشوار ہو گیا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیسا اہتمام کیا ہو, تبھی تو اللہ تب تعالیٰ نے ہمارا, دیکھو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں جن کو اللہ تب تعالیٰ نے ترقیاں عروج اور قبولیت عطا فرمائی, تو ان کی قبولیت میں خالی علمی نہیں, اصل تو ان کی عمل کا جو یہ تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ظاہر ہے علم جیسا آپ کے پاس تھا اور علماء کے پاس بھی, لیکن عمل کا جو اہتمام حضرت نے کیا تھا تو ہماری جتنے بھی اکابر جن کو مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کی مقبولیت میں اصل جڑ جو ہے وہ ان کا عملی اہتمام ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی قبولیت. اس لیے خالی علم کے حاصل ہو جانے پر اور علم لے لینے پر آپ کفایت نہ کریں, اس پر خالی فخر نہ کریں, بلکہ عمل کا بھی اہتمام کریں. علم چندان کے بیشتر خانی جو عمل تو دندیش تو نادانی, حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ اتنا علم پڑھو اگر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہو. تو بہرحال عمل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. نماز با جماعت کا اہتمام کیجیے. آج صبح جو ہے وہ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو آپ کے اساتذہ نے اعلان کیا کہ بھائی پہلی سب پہلے مسافر کے لیے آئے دوسری سب بعد میں آئے, تو پہلی سب جب مسافر کے لیے آئی تو میں دیکھ رہا تھا بڑے لڑکے کتنے ہیں, بڑے لڑکے تو بعد میں نظر آئے, آخری سب جب آئی تب نظر آئے. لیکن میں اپنا ایک جو ہے تاثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, خدا کرے وہ غلط ہو. میں اس غلط ہونا اس معاملے میں غلط ہونے کو میں پسند کرتا ہوں, لیکن بہرحال ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو عام طور پر ہم مدارس میں یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں میں نماز وغیرہ پہلے بچے آ جائیں گے, چھوٹے آ جائیں گے, بڑے پیچھے سے آتے ہیں. علمی مجلسیں جہاں ہوتی ہیں وہاں بھی چھوٹے آ کر کے پہلے بیٹھ جائیں گے, بڑے اطمینان سے آتے ہیں, بڑی پوری شان استغنا کے ساتھ آتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے علم کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہیں. علیم علائے کا بال رہو حتا تو کلب, علم کا حال تو ایسا ہے کہ جب تک آپ اپنی پوری ذات کو اس کے لیے فنا نہ کر دیں, اپنے آپ کو پورے پورا اس کے لیے قربان نہ کر دیں, وہاں تک علم اپنا تھوڑا سا حصہ بھی آپ کو عطا نہیں کرے گا. اس لیے ضرورت اس کی ہے اس کی طرف توجہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضی بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے دربدر فرما, تو نے محض اپنے فضل سے ہمارے اے اللہ ان بچوں کو ان طلبا کو اپنی اپنی جگہوں سے اے اللہ منتخب فرما کر کے یہاں جامعہ میں پہنچایا ہے. یہ تیرا بہت بڑا انعام ہے, فضل و کرم ہے. جس طرح یہ فضل تو نے ان پر فرمایا, اب یہاں آنے کے بعد ان سارے اسباب و وسائل کو ایسا کما حق کو وصول کرتے ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کو اے اللہ ظاہری باطنی دونوں صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے علم کے حصول میں بھرپور طریقے سے مشغول ہونے کی ان کو توفیق عطا فرما. اللہ لایعنی لغویات سے اور معصیتوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما, ان کے ایک ایک لمحے کو اور ان کی اللہ تمام صلاحیتوں کو حصول علم میں لگا دے. اللہ علم کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چھوٹی بڑی چیز سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما, ان کو علم سے علوم سے آراستہ فرما کر اعمال کا اہتمام نصیب فرما, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. ان سے ان کے والدین اور ان کے اساتذہ نے جو توقعات قائم کی ہیں اے اللہ ان سب کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے. اپنے اساتذہ کے لیے اللہ ان کے وجود کو سطح جاریہ بنا. اے اللہ علم کی یہ امانت اے اللہ جو طبقتاً طبقتین اے اللہ ان اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کی ہے, اللہ اس امانت کو ان اساتذہ سے حاصل کرنے کی اللہ ان بچوں کو ان طلباء کو توفیق عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اور اس امانت کو ان طلباء کے واسطے سے اب آنے والی نسلوں تک آگے بڑھا دے. اللہ اس کے لیے بے انتہا قبول فرما, علم کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما, اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو اے اللہ بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں, اے اللہ تعاون کرنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور, فتن, آفات, بلیات, بکارے سے اللہ اس جامعہ کی پوری پوری حفاظت فرما, اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, अधिन शरों बुराइयों से पना चाहिए, उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।